सिद्धेव्य ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं कम्मट्ठजनियवेयण उवहि समुत्तिर्णये जिणेणमिहुं वेयणमहाहियारं विविहियारं परूवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। दसवीं पुस्तक चतुर्थ जो वेदना खंड, उसमें वेदना अनुयोग द्वार की चर्चा अपनी चल रही है। हमने पहले वेदना निक्षेप देखा, वेदना नय विभाषणता देखी, फिर उसके बाद वेदना नाम विधान देखा, वेदना द्रव्य विधान की अभी मत चल रही है अपनी। तो अभी हम पृष्ठ संख्या 47 पर आ गए, 47। एक कौन से जीव के पास उत्कृष्ट ये द्रव्य होता है ज्ञानावरण का, उसकी बात चल रही है, जिसको गुणित कर्मांशिक जीव कहते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन उन्होंने कही कि जो जीव बादर पृथ्वी का एक जीवों में कितने काल तक भ्रमण किया है, तो कहते कर्म स्थिति में कुछ कम, वो कुछ कम कितना है तो त्रसों की उत्कृष्ट स्थिति जो साधिक 2000 सागर है, यानी कर्म स्थिति जो अभी यहाँ ज्ञानावरण की अगर लेते 30 कोड़ाकोड़ी सागर, तो वो कर्म स्थिति ऐसा रूल है त्रसों में जो पूरा ही भ्रमण करके एकेंद्रिय में आया है, तो वो कर्म स्थिति तक एकेंद्रियों से बाहर नहीं निकलेगा, यानी उतने में उसका वो तो पहले वाले कर्म उसके हट जाते हैं। अभी वो कर्म स्थिति पूरी होने को है उसके दो साधिक 2000 सागर, वो बाद में हमने उसको त्रसों में उसको घुमाना है, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि इतना उत्कृष्ट काल त्रसों में भ्रमण किया है और फिर एकेंद्रिय में आया एकाध पर्याय करके फिर वापस जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ये बात बताई उन्होंने कि बादर पृथ्वी का एको में
जो 2000 सागर घूम के आया है
उसकी बात है। नहीं नहीं, उसमें ये बात बताए, पूरी कर्म स्थिति नहीं मगर उसमें बहुत सारा, देखो ये बात कल हमने पढ़ी थी, कल या परसों उन प्रश्न पूछा था कि उसको जल्दी क्यों नहीं वापस भेजते, वहीं पर इतना क्यों। हाँ हाँ वो देखा था हमने। देखो यहाँ पेज नंबर 34 पर नीचे का जो समाधान है, नीचे से तीसरी लाइन में पहले शंका क्या थी हम पूछते हैं। शंकाकार ने पूछा था कि त्रसकायिकों में अपनी स्थिति प्रमाण काल के भीतर उत्कृष्ट द्रव्य का संचय करके पुनः बादर पृथ्वी कायिकों में उत्पन्न होकर वहां अंतर्मूर्त रहकर फिर त्रस स्थिति काल तक त्रसों में भ्रमण करके फिर एक इंद्रियों में उत्पन्न कराते हैं, यानी कर्म स्थिति का यहाँ क्यों बात ये ले रहे कि कर्म स्थिति के अंत तक वो पहले वाले बंधे हुए जो उत्कृष्ट द्रव्य रहा है उसकी बात यहाँ उनको बतानी है। तो प्रश्न ऐसा था 2000 सागर घूमा फिर एक इंद्रियों में गया और फिर अंतर्मूर्त में वापस आया फिर 2000 सागर घूमा, तो उसके लिए उत्तर देते हैं यानी इसी पद्धति से वो 30 कोड़ाकोड़ी सागर का काल पूरा करते, ऐसा प्रश्न था। तो उसका समाधान, क्योंकि त्रस स्थिति को पूर्ण करके यानी पूरे 2000 सागर या साधिक 2000 सागर रस की स्थिति पूर्ण करके जो एकेंद्रियों में आया है, जो जीव एकेंद्रियों में उत्पन्न होते हैं, उनका त्रसों में संचित हुए द्रव्य को बिना गाले निकलना नहीं होता। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होता है तो वो बहुत सारा उसमें से गल जाएगा, तभी वो बाहर निकल सकेंगे। स्थिति पूरी करने तो निकला है ना, 2000 सागर पहले ही निकला है, तो कम बहुत सारा उसने गाला है उसमें, वहाँ जितना इकट्ठा किया था उसमें बहुत सारा द्रव्य निकल जाएगा, तब वो वहाँ से निकलेगा, ये बात वहाँ आई थी। तो इस तरह से हमने देखा वो बादर पृथ्वी काय की बात, और फिर उसमें पर्याप्त भव बहुत और अपर्याप्त बहुत थोड़े होते हैं, ये भी बात देखी। पर्याप्त काल दीर्घ होते हैं और अपर्याप्त काल ह्रस्व होते हैं, ये बात भी हमने देखी। उसके बाद 38 पृष्ठ पर सूत्र नंबर 10 में देखा था कि जब जब आयु का बंध करता है तब उसके योग्य जघन्य योग से आयु का बंध होता है, क्योंकि जब आयु नहीं बनती है तो आने वाला जो द्रव्य साथ में बढ़ता है, जब आयु बनती है तो 8 में बढ़ता है, तो ये जो डिफरेंस होता है उसको बचाने के लिए उस समय वो जघन्य योग से। हाँ, त्रस अभी काउंटिंग शुरू करेंगे हम बादर से, बादर पृथ्वी का एक से, परंतु वो कौन सा जीव लिया है जो पहले त्रस में उत्कृष्ट घूम कर आया हुआ जीव लेना वहां पर। हाँ, फिर बादर में स्टार्ट किया। तो ये आयु की बात हुई कि जघन्य योग से बनती है, आयु को जो बांधने का काल छोड़कर अन्य कालों में उसके उत्कृष्ट योग होता है। फिर आगे बढ़ते हम, वो प्रदेश विन्यास भी देखा था कि अनुलोम विलोम का अर्थ हमने देखा था, अनुलोम यानी हमेशा जैसी निषेक रचना होती है, नीचे ज्यादा परमाणु ऊपर के निषेकों में कम। अब ये जो गुणित कर्मांशिक जीव है उसमें उल्टा होता है, नीचे के निषेकों में कम परमाणु और ऊपर के निषेकों में अधिक परमाणु, उसको विलोम रूप प्रदेश विन्यास कहते हैं, परमाणु की जो रचना है उसकी बात। 45 पृष्ठ पर हमने देखा था 12वें सूत्र में, 11वें की बात हमने देखी थी ना उसके, हाँ आयु की बात, उसके बाद 11वें में क्या देखा था, हाँ वो रही ना 40 पृष्ठ पर 11वें सूत्र में, उपरिम स्थितियों के निषेक का उत्कृष्ट पद होता है, उपरिम स्थिति के जो निषेक है ऊपर वाले निषेक, उसमें परमाणु की संख्या वाला जो पद है वो उत्कृष्ट वाला है, और नीचे नीचे के निषेकों में जघन्य पद होता है, यानी अधिक परमाणु उसके सत्ता में पड़े रहेंगे, कम वाले निषेक खिर जाएंगे। उसके बाद अभी हम यहाँ 12वां सूत्र देखते हैं 45 पृष्ठ पर, नहीं नहीं बंद की अपेक्षा भी ज्यादा, नए बंद की अपेक्षा भी ऊपर के निषेकों में ज्यादा है, क्योंकि उसी को हमने वो विलोम वाला प्रदेश विन्यास कहा था, गुणित कर्मांशिक ही उसका कारण है, संकलेश है इसलिए वैसा होता है, ऐसी बात नहीं है, वो बात हमने कल पढ़ी थी शंका समाधान में। 12वें सूत्र में बताया कि बहुत बहुत बार उत्कृष्ट योग स्थानों को प्राप्त होता है, क्योंकि प्रदेश का जो ग्रहण है वो तो अधिक योग है तो अधिक ग्रहण होता है। 13वें नंबर सूत्र 46 पृष्ठ पर हमने देखा कि बहुत बहुत बार बहुत संकलेश रूप परिणाम वाला होता है, और 14वें उसी पेज पर 14वां सूत्र देखा था, इस प्रकार भ्रमण करके, पहले वो बादर पृथ्वी काय के सभी बात बताए, अभी ऐसा भ्रमण पूरा करके बादर त्रस पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ। तो यहाँ हम आए 47 पृष्ठ पर, तो यहाँ प्रश्न पूछे थे त्रस क्यों कहा, क्योंकि स्थावर का निषेध करने के लिए त्रस कहा, फिर कहते हैं कि पर्याप्त क्यों कहा, तो अपर्याप्त का निषेध करने के लिए पर्याप्त कहा, अब पूछेंगे बादर क्यों कहा, क्योंकि त्रस सभी बादर ही होते हैं, तो अलग से कहने का प्रयोजन क्या था, वो अब पूछेंगे। शंका नीचे जो शंका है ना, सबसे नीचे से तीसरी लाइन, स्थावर का प्रतिषेध करने, ये बादर का उस एक वाक्य ऊपर पढ़ते हैं, बादर शब्द के निर्देश का प्रयोजन सूक्ष्मता का प्रतिषेध करना है, वो सूक्ष्म नहीं है, बादल है, ये बताना है। अब उस पर शंका पूछते हैं, स्थावर का प्रतिषेध करने से ही सूक्ष्म का प्रतिषेध हो जाता है, इसका अर्थ समझ में आया? देखो यहाँ क्या किया, त्रस की बात की और स्थावर है ही नहीं वे, और सूक्ष्म और बादर भेद किस में होता है, तो स्थावरों में ही होता है। जब त्रस कह ही दिया तो वो सूक्ष्म नहीं है, ये तो बिना कहे ही सिद्ध हो जाता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव और दूसरी पर्याय में नहीं पाए जाते। तो फिर यहाँ बादर कहने की क्या आवश्यकता थी, ये प्रश्न है। समाधान, नहीं, क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जो सूक्ष्मता उत्पन्न होती है उसके बिना, यानी वो सूक्ष्म की बात नहीं है कि जो सूक्ष्म नाम कर्म के उदय में होती है। सूक्ष्म जो जीव है, सूक्ष्म एकेंद्रिय, उनको सूक्ष्म क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय पाया जाता है, उसकी बात यहाँ नहीं है। त्रसों में तो सूक्ष्म नाम कर्म का उदय ही नहीं है, बादर नाम कर्म का ही उदय सबके है। फिर भी अभी यहाँ सूक्ष्म क्यों कहा? तो विग्रह गति में वर्तमान त्रसों की सूक्ष्मता स्वीकार की गई है। ये परमाणुओं का ग्रहण अभी, ये तो शरीर के परमाणुओं का नहीं होगा विग्रह गति में, तो ये सूक्ष्म की बात छोड़ी, यहाँ बादर की बात की, यानी वो तो लगातार वो अधिक परमाणु का ग्रहण करने वाला ही जीव लिया यहाँ पर। उसमें भी विग्रह गति में और बाद में उसमें जो कुछ योगों की जो कुछ बात बनती होगी, तो प्रदेशों का ग्रहण अधिक से अधिक हो, ये बात यहाँ बताना चाहते हैं, इसलिए वो बादर वाली बात बता दी। फिर शंका, वे सूक्ष्म कैसे है, विग्रह गति में उन्हें सूक्ष्म क्यों कहते हो? तो उसका समाधान, क्योंकि उनका शरीर अनंतानंत विसृसोपचयों से उपचित औदारिक नौ कर्म स्कंधों से रहित है, अतः वे सूक्ष्म है। विग्रह गति में यानी मोड़ वाली गति में क्या हो जाता है, वहाँ शरीर के परमाणुओं का ग्रहण नहीं है, क्योंकि औदारिक या वैकरिक जो कुछ है वो नाम कर्म का उदय तो वहाँ जहाँ वो पहुँचता है तभी होता है, मोड़ वाली गति में उसका कारमान का योग में उसका ग्रहण नहीं होता है। और जब वो ग्रहण करता है औदारिक शरीर, अभी यहाँ औदारिक की बात करेंगे, औदारिक शरीर का ग्रहण करता है, क्योंकि अभी एकेंद्रियों में से निकला है तो औदारिक वाला ही होगा, एकेंद्रियों में से देव में या नारकी में नहीं जाएगा डायरेक्ट, बीच में पंचेंद्रिय में आएगा तभी जा सकता है। तो यह औदारिक का ग्रहण की बात की उन्होंने, तो औदारिक परमाणु का ग्रहण होता है, तो अकेले परमाणुओं का ग्रहण नहीं होता, एक एक परमाणु के साथ अनंत अनंत विसृसोपचय वाले परमाणु होते हैं, इसलिए जब ग्रहण करता है तो वो जो पूरा औदारिक का स्कंद है वो विसृसोपचय सहित वाला है, तो उसके कारण उसको हम बादर कहेंगे। और जहाँ औदारिक के परमाणु का संबंध ही नहीं है वहाँ उसी जीव को सूक्ष्म कहेंगे, ये यहाँ अपेक्षा है, अपेक्षा से बात की। देखो समाधान को फिर पढ़ते हैं, उनका शरीर अनंतानंत विसृसोपचयों से उपचित, उपचित यानी विसृसोपचयों से सहित चिपके हुए औदारिक नौ कर्म स्कंदों से रहित है, यानी विसृसोपचय से जुड़े हुए ऐसे औदारिक नौ कर्म के जो स्कंद है वे इस जीव के साथ नहीं है, चिपके हुए। शंका, सूक्ष्मता का प्रतिषेध किस लिए किया जाता है? तो कहते वो विग्रह गति वाली सूक्ष्मता है, उसको क्यों नहीं यहाँ लेना? उन करेगा नहीं, इसीलिए उसको सूक्ष्म कहा। उस जीव के साथ केवल कारमाण और तेजस ही शरीर है, उसके विसृसोपचय है, उसके साथ में औदारिक के परमाणु या स्कंद जो है ही नहीं है, इसलिए उस जीव को सूक्ष्म कहा। विसृसोपचय सहित होता है तो वो तो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो उसमें हो गए, उसमें तो रहेंगे हर एक का अपना अपना विसृसोपचय अलग होता है। औदारिक के परमाणु के साथ चिपके हुए विसृसोपचय वो अलग, कारमाण और तेजस के साथ वो उसके अलग। तो जीव को वहां भी कथनचित मूर्त जो कहते हैं, तो ये कारमान तेजस अवतारिक आदि शरीरों की अपेक्षा उसको कथनचित मूर्त भी कहता है, शास्त्र में कहा है, उसको पुद्गल भी कहा है कहीं कहीं। तो यहाँ उस जीव को सूक्ष्म इसलिए कहते हैं कि अवतारिक के स्कंद उसके पास नहीं है। अब शंका है कि ये सूक्ष्म होगा या बादर होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ तो हमको ज्ञानावरण कर्म देखना है। उसका समाधान देखो, सूक्ष्मता का प्रतिषेध किस लिए किया जाता है, उसका समाधान योग वृद्धि का निमित्त नो कर्म है। देखो क्या है? जीव में तो योग की शक्ति है क्योंकि वो विशिष्ट नाम कर्म का उदय होता है, परंतु जीव स्वयं ये नो कर्म स्कंधों का अवलंबन लेता है और योग को बढ़ाता है। जिसे पैसे देख देख कर यहाँ अपने को कुछ होता है ना, चलो आप कमाई ज्यादा करें। तो ये नो कर्म स्कंध जो है वो तो पड़े हैं सब, तो जीव उसका अवलंबन लेता है। तो यहाँ लिखा ना, योग वृद्धि होती उसके कारण। शास्त्र में योग की परिभाषा ऐसे कि मन वचन काय के वो स्कंधों को या वर्गणाओं के अवलंबन से यहाँ जीव में योग होता है, यानी योग तो है, उसकी शक्ति तो है, परंतु उसका अवलंबन करता है जीव, तो योग में वृद्धि होती है। इस बात को जतलाने के लिए तथा ये योग का बढ़ना नौ कर्म का तो ग्रहण होता ही होता है, कर्म का भी ग्रहण वहां होता है, पर्याप्त काल को बढ़ाने के लिए उसका प्रतिषेध किया गया है। नहीं समझे? हाँ, रुजु गति। देखो पहले समय में उपपाद योग होता है और फिर एकांत अनुवृद्धि होती है और उसके बाद परिणाम योग, तो हमें परिणाम योग का काल बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, विग्रह गति में टाइम पास नहीं करना है, फिर पहले ही समय में यानी रुजु गति से ही जाकर वो वहां योग उसके वृद्धि का यानी उपपाद होकर बाद में वृद्धि होगी उसके, तो उसके जो परिणाम योग स्थान जल्दी शुरू हो जाएंगे, वो काल बढ़ेगा। इसलिए पर्याप्त काल को बढ़ाने के लिए हमने देखा था ना, अपर्याप्त काल और पर्याप्त काल, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होती है तब तक उसको अपर्याप्त काल कहा और बाद में उसको पर्याप्त काल कहा था। ये जो गुणित कर्मांशिक जीव है उसका पर्याप्त काल बड़ा है हमने देखा था, अपर्याप्त काल छोटा है, किससे, क्षपित कर्मांशिक से। पर्याप्त काल से अपर्याप्त काल छोटा है वो तो कोई भी कहेगा, उसकी बात नहीं है। दो जीवों में कंपैरिजन है, क्षपित कर्मांशिक जिसके सत्ता में कर्म कम से कम है और गुणित कर्मांशिक यानी मैक्सिमम है, उत्कृष्ट है। यह सूत्र मध्य दीपक है। यहां तो बताया कि वो रुजुगति से गया हुआ, बादर शब्द डाला है और वहां विग्रह गति का निषेध कर दिया है, तो यह मध्य दीपक समझना, उसका अर्थ क्या है। अतः सर्वत्र कर्म स्थिति में, सर्वत्र कर्म स्थिति, हमने कर्म स्थिति की बात चालू की थी बादर पृथ्वी का एक से लेकर, तो सर्वत्र कर्म स्थिति में विग्रह गति का अभाव है यह समझना चाहिए। इसके पहले के भवों में भी और बाद के भवों में भी रुजु गति से जाने वाला जीव लिया, मोड़ सहित वाले को ही विग्रह, विग्रह का अर्थ होता है मोड़, और जो बिना मोड़ की उसको अविग्रह कहते हैं। सत्तर सूत्र में आए ना, अलग सूत्र बताए उसके लिए, विग्रह शब्द के अलग अलग अर्थ करते हैं। विग्रह का अर्थ होता है वो तो रोक लगाया है, किस पर, शरीर ग्रहण करो, उसको भी विग्रह कहते हैं, अलग अलग अर्थों में वो विग्रह शब्द आता है, यानी बिना मोड़ वाली गति यहां समझना। जरा जोर से पूछना। हाँ, रुजु गति वाला लेना पड़ेगा, सर्वत्र लेना, सर्वत्र कर्म स्थिति में। हाँ, कर्म स्थिति पूरी होती है तो पहले के भव भी जो अभी तक करके आया और अभी भी जो बाकी है, कर्म स्थिति में सर्वत्र यही रूल समझना चाहिए, क्योंकि हमें अधिक से अधिक योग वाला जीव चाहिए जो गुणित कर्मांशिक होगा। अब फिर शंका, पर्याप्तक व अपर्याप्तक इन दोनों में ही उत्पन्न होने की संभावना होने पर पहले पर्याप्त को में ही किस लिए उत्पन्न कराया है, क्योंकि वहाँ बादर त्रस पर्याप्त कहा, तो कहते अभी एक इंद्रियों में से आया है त्रसों में, तो हो सकता है अपर्याप्त में जाए, आपने पर्याप्त क्यों कहा। उसका समाधान, यह प्रायः पर्याप्त को में ही उत्पन्न होता है, प्रायः ने बहुत करके, बहुतांशी जिसको कहते हैं, यानी जनरली हम बात करते हैं मेजॉरिटी। अपर्याप्त को में उत्पन्न नहीं होता, इस बात को जतलाने के लिए यानी बताने के लिए पर्याप्त को में ही उत्पन्न कराया है। शंका, यह अर्थ भवावास के निरूपण द्वारा ही कहा जा चुका है, उसे फिर यहाँ किस लिए कहा गया है। पहले बताया था ना, पर्याप्तकों के बहुत बहु होते हैं और अपर्याप्तों के कम होते हैं, या पर्याप्त का दीर्घ काल है वो तो ये भवावास में बता दिया है। ये जो कंडीशंस जो अलग अलग बताई थी, उसको कहीं भवावास कहा, कहीं वो अलग अलग शब्द आते हैं जो आगे भी आने वाले हैं, और हमने परिशिष्ट में भी प्रस्तावना में भी देखे थे, प्रस्तावना में हमने देखा था पृष्ठ 4 पर। प्रस्तावना पृष्ठ 4 निकालना, देखो स्वामित्व जो दो अकड़े ना, स्वामित्व ये यहाँ फिर पढ़ते, हम स्वामित्व पहले से पढ़ेंगे, अपना विषय समझने में आसान होगा। स्वामित्व अनुयोग द्वार में मिला 4 नंबर, ज्ञानावरणी आदि कर्मों के उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट आदि पद किन किन जीवों में किस किस प्रकार से संभव है, इस प्रकार से उनके स्वामियों का विस्तार पूर्वक विचार किया गया है। उदाहरणार्थ ज्ञानावरणी को लेकर उसकी उत्कृष्ट वेदना के स्वामी का विचार करते हुए कहा गया है कि जो जीव, जो अभी हम पढ़ चुके उसकी बात चल रही है, बादर पृथ्वी का एक जीव में साधिक 2000 सागरोपमों से हीन कर्म स्थिति, 70 कोड़ाकोड़ी सागर, मैंने बताया था ना 30 कोड़ाकोड़ी, तो वो पहले मैंने भी कहा था और मैंने 70 की बात की थी, फिर हमें ऐसा लगा कि ज्ञानावरण के लिए वो 30 लिखना, तो ये तो कर्म स्थिति यानी जनरल की बात है, 70 कोड़ा, इसलिए उन्होंने लिखा भी वहां इतना रहा है। उनमें परिभ्रमण करता हुआ जो पर्याप्तों में बहुत बार और अपर्याप्तों में थोड़े बार उत्पन्न होता है, इसी को भवावास कहा। यह भवावास लिखा है परंतु वो भवावास चाहिए, आवास शब्द है ना वो, ये भवावास की बात हुई एक नंबर की। अब दूसरी कंडीशन हमने क्या देखी थी, पर्याप्तों में उत्पन्न होता हुआ दीर्घ आयु वालों में तथा अपर्याप्तों में उत्पन्न होता हुआ अल्प आयु वालों में ही जो उत्पन्न होता है उसको अद्धावास कहा, यानी उसका पर्याप्तों का जो पर्याप्तों में ज्यादा बार जन्मता है और वो पर्याप्तों की जो आयु है वो अधिक होती है। अब तीसरी बात, तथा दीर्घ आयु वालों में उत्पन्न होकर के जो सर्व लघु काल में पर्याप्तियों को पूर्ण करता है, यानी उसका अपर्याप्त काल छोटा होता है, ये भी हमने कल देखा था, जब जब वह आयु को बांधता है तत्प्रायोग्य जघन्य योग के द्वारा ही बांधता है, इसको आयु आवास कहा। जो उपरिम स्थितियों के निषेक के उत्कृष्ट पद को तथा अधस्तन स्थितियों के निषेक के जघन्य पद को करता है, इसी को वह अपकर्षण उत्कर्षण आवास अथवा प्रदेश विन्यास आवास कहा, यानी उसके प्रदेश रचना कैसी होती है वैसा आवास कहा, प्रदेश विन्यास आवास। हमने देखा था ना ऊपर के निशकों में अधिक परमाणु, नीचे कम, उल्टी ऐसी रचना होती है। बहुत बहुत बार जो उत्कृष्ट योग स्थानों को प्राप्त होता है उसको योगावास कहा, और बहुत बहुत बार जो मंद संक्लेश परिणाम को, मंद नहीं संक्लेश चाहिए, मंद शब्द नहीं, अभी अभी हमने पढ़ा ना सूत्र पढ़ा था 13 नंबर 46 पृष्ठ पर, बहुत बहुत बार बहुत संक्लेश रूप, यह मंद के भूल से मंद पढ़ा है, बहुत बहुत बार जो बहुत संकलेश परिणामों को प्राप्त होता है, मंद के बदले बहुत करना, इसी को संकलेशावास कहा। ये कंडीशंस डाली नहीं उन्होंने, भवावास, अद्धावास, आयु आवास, प्रदेश विन्यावास, योगावास और संकलेशावास। अब हम अपने पृष्ठ पर आते हैं, अभी आगे भी उन्होंने बात बताई है। अभी उसकी वो त्रसों में आने के बाद और कहाँ कहाँ घुमाएंगे वो देखेंगे। अभी अब ये जो आवास क्या बात है, भवावास, उसको पढ़ने के लिए हम वहाँ गए थे। अब अपने पृष्ठ पर आते हैं। यहाँ पर 48 पृष्ठ पर नीचे के तीसरी लाइन, तो यह अर्थ भवावास के निरूपण द्वारा ही कहा जा चुका है। भवावास में क्या हमने देखा था, ये अपर्याप्तों के बहुत बहुत होते, उसके कम होते, तो भव आवास, भवावास बता दिए। तो उसे फिर किस लिए कहा है यहाँ, ये दोबारा कहने के क्या प्रयोजन था, उसका समाधान उसी अर्थ को दृढ़ करने के लिए यहाँ उसे फिर से कहा है। ये कुछ पुनरुक्ति दोष नहीं होता है। अब 49 पृष्ठ, बादर त्रस पर्याप्तकों में, अभी जो कंडीशन पढ़ी थी उसको फिर दोहराते हैं। रुजुगति, रुजुगति से उत्पन्न हुआ ना वो, क्योंकि विग्रह गति को हमको टालना है वहाँ। फिर उत्कृष्ट योग, उत्कृष्ट योग यहाँ हो गए उस जीव के, और उसके योग उत्कृष्ट कषाय से उत्पन्न होने के, संकलेश ज़्यादा करना है तो यहाँ उसके योग भी बढ़ेगा। वैसे उत्कृष्ट कषाय से उत्पन्न होने के प्रथम समय में अंतः कोड़ाकोड़ी प्रमाण स्थिति को बांधता है। वहाँ तो उत्कृष्ट स्थिति उसकी 3 सप्तमांश थी, अभी यहाँ त्रसों में आया है और उसका ये पहला समय ने उपपाद योग है, फिर एकांत वृद्धि होगी। हाँ, तो यहाँ वो अंतः कोड़ाकोड़ी प्रमाण स्थिति को बांधता है पहले समय में। शंका, एकेंद्रियों में बांधे हुए समय प्रबद्धों का आबाधा को छोड़कर उसके ऊपर उत्कर्षण करता हुआ क्या सबका एक साथ उत्कर्षण करता है अथवा अन्य प्रकार से? एकेंद्रियों में जो उन्होंने समय प्रबद्ध बांधे थे, सत्ता में अभी पड़े हैं, अब त्रसों में आने पर वहां तो कितनी 3 सप्तमांश सागर अधिक से अधिक स्थिति थी उसकी किसी भी कर्म की, अंतिम समय में बांधा हुआ भी आबादा के ऊपर इतना उसका कर्म पड़ा है। अब त्रसों में आया तो कितने सागर बांधने लगा, अंत कोड़ाकोड़ी सागर, तो वहां के जो है वो उसकी स्थिति बढ़ेगी। और हमने वो 3 सप्तमांश सागर तक बढ़ती ऐसा देखा ना, तो वो तो ज्ञानावरण की कितनी अधिक से अधिक शक्ति है, तो 30 कोड़ाकोड़ी सागर वैसा उसमें अर्थ लेना है। देखो कल हमने क्या देखी थी, 3 सप्तमांश बंदी है, हाँ, तो उसमें 3 सप्तमांश तक उसकी उत्कर्षण होगा, परंतु अभी पढ़ेंगे हम ज्ञानावरण की कितनी शक्ति है अधिक से अधिक, 30, तो उतनी उसमें बढ़ सकती है ऐसा मुझे लगता है। अभी हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ, अभी त्रस में आया ना, अभी अंत कोड़ाकोड़ी की बांधी है तो वहाँ तक उसको उत्कर्षण हो सकता है, अंत कोड़ाकोड़ी तक। अभी त्रस में बांधा, बनते समय ही पूर्व में बंधे हुए की स्थिति बढ़ेगी, जिसको हम उत्कर्षण कहते हैं। हाँ, सत्ता में है मगर उसके भी उत्कर्षण होकर अंत कोड़ाकोड़ी तक बढ़ेगी, ऐसा इनका कहना है। अभी हम पढ़ेंगे ना, ज्यादा क्लियर होगा। तीन सप्तमांश सागर और अंत कोड़ाकोड़ी सागर, एक सागर का 3 सप्तमांश भाग। हाँ, और वो अंत कोड़ाकोड़ी करोड़ गुना करोड़ सागर उसके अंदर वाला। नहीं नहीं नहीं, उसका 3 सप्तमांश नहीं लेना, अंत कोड़ाकोड़ी सागर और ये तीन, एक सागर का 3 सप्तमांश, अब हम पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा क्लियर होगा। कल जो अपनी शक्ति स्थिति और प्रकट स्थिति ऐसी बात निकली थी, उसके बाद यहाँ पढ़ेंगे हम समाधान। इस प्रकार पूछने पर उत्तर देते हैं। प्रश्न क्या है कि अभी यहाँ जो उत्कर्षण होगा तो कहाँ तक हो सकता है? एक इंद्रियों में बांधे हुए कर्म है, त्रसों में आने पर अभी अधिक स्थिति बांधता है, तो वहाँ बंधे हुए कर्मों में उत्कर्षण कहाँ तक हो सकता है? सब कर्मों का यानी सभी जो बंधे हैं वो सब के सब जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, क्या वो सब डिटेल सब बता लेंगे। इस प्रकार पूछने पर उत्तर देते हैं। कर्म स्थिति के प्रथम समय में बांधे हुए ये कर्म स्थिति यानी अभी जो कुछ ये तो वहाँ से आया है ना, अभी हमने शुरू किए जहाँ से वो कर्म स्थिति प्रमाण उसमें 2000 सागर कम करके उसको बाहर निकला था, तो तब जो बांधे थे, कर्म स्थिति के प्रथम समय में बांधे हुए कर्म पुद्गल स्कंधों का अंतर्मूर्त कम त्रस स्थिति काल प्रमाण उत्कर्षण किया जाता है, क्योंकि इनकी इतनी शक्ति स्थिति शेष है। देखो किसी कर्म की जो कर्म स्थिति है वो कर्म से, हम अभी 1000 वर्ष लेते हैं, 1000 वर्ष हमने मान ली कर्म की स्थिति है, तो 1000 वर्ष के पहले समय में जो कर्म बांधा है तो वो आबादा छोड़कर उसके उदय काल कहाँ तक चलेगा, उसके निषेक कहाँ तक पड़े हुए हैं 1000 वर्ष तक, या उन कर्मों में कितनी योग्यता है, ज्ञानावरण कर्मों पुद्गल जो कर्म परमाणु उसमें योग्यता कितनी है शक्ति, तो अभी हम 1000 समझते हैं। 1000 की वहाँ तो शक्ति उसमें पड़ी है, तो वे जो कर्म समय में बांधे हुए कर्म पुद्गल स्कंद, हाँ तो अभी वो कर्म स्थिति अभी हमने छोटा काल लिया ना, अभी वो कितना 30 है 70 है उसकी बात अभी छोड़ दो। पहले समय में जो बांधे उसका अधिक से अधिक काल 1000 हम समझते हैं। अब कोई जो वो घूम करके वगैरह अभी उसके 100 साल बाकी ऐसा समझेंगे, कर्म स्थिति के 100 साल बाकी है, तब वो त्रस में आया है, तो अब जो त्रसों में आने पर जो वो कर्म का बंध और ज्यादा करेगा, वहां तो 1000 का मान लेते हैं, अभी यहाँ और ज्यादा किया उसने, तो अभी जो वो परमाणु उस समय जो वो पुद्गल स्कंध है 1000 वर्ष तक उदय में आए ऐसे वहां कर्म पड़े है ना, पहले समय में बांधे थे 1000 उसकी अधिक से अधिक स्थिति है, तो वो परमाणु पड़े हैं, तो उस अभी सुनो पहले पूरी बात, तो उसमें उत्कर्षण होकर कितना हो सकता है, तो उसकी बात है उसमें अभी त्रसों में कब आए वो 900 साल के बाद आया, अब उनमें कितनी पड़ी है अभी 100 साल तक की उसमें अधिक से अधिक योग्यता है, शक्ति पड़ी है, तो वो कहाँ तक उत्कर्षण करेंगे, तो वो 100 साल, और वो ये यहाँ पर क्या है वो त्रस की स्थिति अंतर्मूर्त उसमें से घटाया है। कर्म स्थिति के पहले समय में जो परमाणु बांधे थे, अभी हम ज्ञानावरण की बात है, तो 30 कोड़ाकोड़ी वाले, तो 30 कोड़ाकोड़ी वाले के ऊपर तो उसका उत्कर्षण नहीं होगा, कम बांधा था, परंतु उसमें कितनी योग्यता होती है उसकी बात चल रही है, या वो त्रसों में से आया हुआ है ऐसा भी लेंगे, त्रसों में बांध कर आया है तो उसके सत्ता में तो पड़े हुए कुछ परमाणु इतने, वही जीव त्रसों में से जो पूरा काल बिता कर आया है वही तो एक इंद्रियों में इतना काल पूरा भटकेगा, तो उसकी सत्ता में इतने परमाणु पड़े हैं तब के पहले समय वाले, तो वो अधिक से अधिक कहाँ तक उत्कर्षण करेंगे, तो उसमें योग्यता उतनी है ज्ञानावरण में कि 30 कोड़ाकोड़ी तक, परंतु 30 कोड़ाकोड़ी में से इतना काल उसने ये सादिक 2000 सागर छोड़कर बाकी काल तो उसने एक इंद्रिय में गमाया है ऑलरेडी, तो उन पुद्गल कर्मों को ये कर्म स्कंधों को और कितना ऊपर तक चढ़ सकते हैं वो, पूरा 30 कोड़ाकोड़ी नहीं, अभी 30 कोड़ाकोड़ी में से जो काल बिताया है उसको भूल जा। त्रस की स्थिति अभी कितनी रही है, 2000 सागर, तो वहां तक वो बढ़ेगी उत्कर्षण होकर। हाँ, बादर पृथ्वी का एक में गए, 70 कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति वाले परमाणु उसके साथ पड़े हैं। हम 70 की बात करते हैं। हाँ, 2000 सागर, साधिक 2000 सागर, इतनी उसकी कैपेसिटी अभी है, शक्ति उसमें, हाँ, जूने कर्मों में इतनी शक्ति पड़ी है, तो वहाँ उनका उत्कर्षण होकर इतने ही ऊपर चढ़ेंगे वे। त्रस की स्थिति इतना ही उसका उत्कर्षण होगा। हाँ हाँ, देखो इसको नहीं, वहां हमने 3 सप्तमांश सागर तक ही ऊपर चढ़ता ऐसा देखा था। अब यहाँ जो पहले समय वो तो कर्म अंदर पड़े है, पहले जो त्रसों में बांध कर आए ना, ये तो पृथ्वी में, पृथ्वी कायकों में तो उसने 3 सप्तमांश बांधे, परंतु पृथ्वी कायिक में आया कहाँ से, पूरा त्रस घूमकर आया हुआ है, तो कर्म स्थिति के पूरे उसके पड़े हैं अंदर, तो उसमें उतनी यानी वो योग्यता है ना, शक्ति स्थिति उसमें उतनी है। वो तो जाएंगे निकल, पर अभी वो पहले के जो परमाणु पड़े हैं उसकी बात चल रही है, तो वो कहाँ तक चलेंगे, क्योंकि अभी कर्म स्थिति पूरी नहीं हुई और त्रसों में आ गया। अब त्रसों में आया यानी अभी उसके कर्म स्थिति का कितना काल बाकी है, हम 2000 यानी साधिक 2000 को 2000 कहेंगे, 2000 सागर बाकी है। तो अब जो पुराने कर्म है, नए कर्म बंदे अंत कोड़ाकोड़ी सागर के, परंतु पुराने कर्मों में उत्कर्षण होकर कहाँ तक जाएंगे, ये त्रस स्थिति इतने ऊपर चले जाएंगे, 2000 सागर वो उत्कर्षण होगा उसमें। हाँ हाँ, उसकी बांधी वही रूल लगा, क्योंकि जो इतने लंबे काल वाले बंदे थे उसी के उसी में ये होगा ना, क्योंकि जो 3 सप्तमांश वाले वो तो खिरते गए। हाँ, क्योंकि बांध के आया है ना, वो सत्ता में पड़ा है, 30 कितने बहुत चले जाते हैं। अभी हमारे जो कुछ उदय चल रूप चल रहे हैं, तो कितने कोड़ाकोड़ी सागर के वो चल रहे हैं ना अभी, अभी पता नहीं कहाँ कौन जीव कहाँ से आया है, और कितने कितने सत्ता वाले कैसे कैसे कर्म पड़े अंदर, और नए कर्मों का भी बंद होता रहता है। हाँ देखो, ये समाधान फिर पढ़ेंगे, ये जरा विषय समझने में थोड़ा कठिन सा लगता है, हम बार बार पढ़ेंगे तो मुझे भी ख्याल में आएगा और आपके भी आएगा शायद। नहीं, पहले हमने हाँ वही रूल लागू है, क्योंकि एकेंद्रियों में बंदे हुए वहां तक ही चढ़ेंगे, और ये पहले, हाँ वो रूल तो वही है, उसको शक्ति नहीं कहलाएंगे उसकी। हाँ, ये सब में ज्ञान चंद्रिका निकालना, वो शक्ति वाले स्थिति, और कर्मकांड निकालना पड़ेगा, है ना, कर्मकांड में ही ये बात आई ना, अभी पता भी नहीं कहाँ मिलेगा वो। हम बढ़ते हैं, राइट साइड में वो ब्राउन वाली किताबें हैं। यानी ये कर्म स्थिति के पहले समय में बंधे हुए का जी बात है, वो नीचे नीचे ऐसा खड़ा करके रखे पुस्तक में पीछे के भाग में, एक ब्लू और एक ब्राउन निकालना, पता नहीं किस में है, एक उत्तरार्ध एक पूर्वार्ध है ना। नहीं नहीं, वो देना जो कुछ है, कर्म स्थिति पूर्वार्ध में ही होगी, पता नहीं। इसमें ये स्थिति बंध की बात है, स्थिति बंध इसमें है, देखो 155 के आगे, मेरे ख्याल से ये उत्कर्षण अपकर्षण वाला जो उसमें है क्या? हाँ, किसमें है? कल होंगे तो बताएंगे कल, क्योंकि ये ढूंढना पड़ेगा। एक मिनट, हाँ उसमें बीच में भी एक मिनट, कर्म स्थिति रचना इसमें है, स्थिति के भेद, ये उत्कर्षण अपकर्षण वाले प्रकरण में देखना पड़ेगा। अभी हम बाद में उसकी चर्चा करेंगे, अभी तो पढ़ेंगे इसमें से और फिर ढूंढ के रखूंगी वो कहाँ की क्या है मैटर, समय मिले तो। अब ये समाधान हम यहाँ से ही पढ़ते स्टार्टिंग से। देखो, कर्म स्थिति के प्रथम समय में बांधे हुए कर्म पुद्गल स्कंधों का अंतर्मूर्तकम त्रसस्थिति काल प्रमाण उत्कर्षण किया जाता है, क्योंकि इनकी इतनी शक्ति स्थिति शेष है। कर्म स्थिति अभी हम 30 कोड़ा कोड़ी सागर ज्ञानावरण की लेते हैं, तो समय पहले समय में जो कर्म बांधे हैं उसकी निषेक रचना होकर 30 कोड़ा आबाधा काल को छोड़कर निषेक रचना होगी। 3000 सागर माइनस करेंगे तो 3000 वर्ष और एक समय से लेकर 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक प्रत्येक समय में एक एक निषेक ऐसी रचना हो जाएगी। हम देखते हैं ना, वो पुच्छकार रचना होती है। अब ये 30 कोड़ा कोड़ी का पहला समय, इस समय जो कर्म बांधे हैं वो सत्ता में इस तरह से ये निषेक रूप पूरे पड़े हैं। ये उसकी अंतिम स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर की। तो इस समय में जो कर्म परमाणु बांधे हैं, ये सभी कर्मों में शक्ति स्थिति कितनी है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। अब ये 30 कोड़ा कोड़ी सागर में से अभी हम लेते हैं कि उसकी इतनी त्रस की स्थिति बाकी है। हाँ, अब वो यहाँ अभी यहाँ पर वो आया है और यहाँ नया कर्म का बंध करेगा त्रस में आने पर। अभी हम छोटा आबादा देख, तो यहाँ पर जो वो ऊपर तक समझना, अंत कोड़ा कोड़ी तक, तो इतने तो उसके परमाणु खिर चुके हैं नीचे। जब त्रस में आया है तो वहाँ तक के उसके परमाणु उसके नीचे खिर गए हैं। उस समय बांधे हुए की बात है, नए नए बांधता आया वो फिरते गए उसकी बात नहीं। अभी हम वो पहले समय में बंधे हुए की बात चल रही है। तो वहां के अभी इतने परमाणु बाकी है उसके, ये भी सत्ता में जो पड़े हैं ना उसके साथ ये भी है। अलग अलग समय में बंधे हुए यहाँ सभी सत्ता में पड़े हैं। उसमें से जो उस समय बंधे हुए है वो परमाणु अब क्या होगा उनका? तो अभी ये उदयावली वाले तो नहीं खिरेंगे, उदयावली के अभी हम थोड़े छोड़ दो। तो अभी ये जो है वो कहाँ उत्कर्षण होगा? अभी इसका आबादा छोड़कर इसका उत्कर्षण ऊपर होगा। यहाँ कुछ जाएंगे, यहाँ कुछ जाएंगे, यहाँ कुछ जाएंगे, कहाँ तक जा सकते हैं? इसकी जितनी कर्म स्थिति अभी जितनी बाकी है, कितनी बाकी है? साधिक 2000, साधिक 2000 सागर बाकी है। तो ये ऊपर चढ़कर कहाँ तक जा सकते हैं? 2000 सागर तक। हाँ, ये पहले समय में बंधे हुए की बात। अब उस समय दूसरे समय में बंधे थे उसका क्या होगा? तो एक समय अधिक जाएगा ऊपर। हाँ, देखो इसको पढ़ते हैं अभी।
हाँ,
नहीं, वो तो अभी हम 30 वाले ही ले लेंगे, अभी तो हम 30 वाले की बात करेंगे, 30 की भी जो होगी ना। हाँ, आपका प्रश्न मुझे ख्याल में आया, यदि हम 70 कोड़ा कोड़ी समझते हैं तो 30 कोड़ा कोड़ी वाला है तो यूटिलाइज हो गया। हाँ, तो हम अभी 30 कोड़ा कोड़ी वाला ही लेकर चलेंगे, जहाँ उस कर्म की उसमें लेनी पड़ेगी, ऐसा अभी ज्ञानावरण की बात है तो उसमें उसकी बात चलेगी। आपका प्रश्न सही है, इसलिए अभी हम इसको 30 कोड़ा कोड़ी लेकर चलेंगे, आगे पढ़कर अभी उसमें जो कुछ अपना सेट होना है वो करेंगे। बात सही है आपकी, क्योंकि यदि 70 कोड़ा कोड़ी सागर में 2000 सागर कम करेंगे हम, तो वो 30 कोड़ा कोड़ी वाले यूटिलाइज हो गए हैं। हाँ, इसलिए अभी हम ज्ञानावरण में 30 कोड़ा कोड़ी की ले लेंगे। ये कन्फ्यूजन क्यों चल रहा था, प्रस्तावना में उन्होंने 70 कहा है, ये तो सामान्य की बात की, और यहाँ तो ज्ञानावरण की बात हो रही है, तो उसमें हम 30 ले लेंगे। अभी हम ज्ञानावरण में 30 ले लेंगे अभी, क्योंकि हम भी पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि कितनी बातें आगे चलकर क्लियरिफाई ज़्यादा होती है, क्लियरिटी होती है, इसलिए कहीं पर पेन से कुछ नहीं लिखना, पेंसिल से, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सब, ये तो स्वाध्याय चल रहा है ना अपना, अभी कोई दूसरे पढ़ाने वाले हैं नहीं हम, तो हो सकता है कितनी बातें आगे चलकर अपने ख्याल में आती है तो हम फिर उसको सुधार करेंगे। ये तो ख्याल में है ना, जो पहले वो अंतर्मुहूर्त क्यों कम किया फिर, एक तो उदयावली को भी नहीं लेना, क्यों, परंतु उदयावली की बात ही नहीं, वो तो उनका उत्कर्षण भी नहीं होगा, परंतु उदयावली के ऊपर के भी है, वो कहाँ तक जाएंगे, वो 2000 सागर, फिर अंतर्मुहूर्त क्यों कम किया उसमें से, इसकी भी आबादा होगी ना यहाँ के कर्मों की भी। हाँ, तो कम से कम आबादा वो अंतर्मुहूर्त वाली वहाँ भी लेनी उनकी। इसको फिर पढ़ती हूँ। कर्म स्थिति के प्रथम समय में बांधे हुए कर्म पुद्गल स्कंधों का, ये पढ़े है अंदर, ये सिद्ध होता है ना, कर्म स्थिति के पहले समय में 30 कोड़ा कोड़ी सागर वाली जो कुछ है वहां, जो पहले समय में जितने बांधे हुए या जब जो कोई बांधे, उसका कहाँ तक उत्कर्षण होगा, अंतर्मूर्त कम त्रस्त स्थिति काल प्रमाण उत्कर्षण किया जाता है, क्योंकि इनकी इतनी शक्ति स्थिति शेष है। द्वितीय समय में बांधे हुए समय प्रबद्ध का, उसकी अपनी निषेक रचना अलग है, उससे एक समय अधिक त्रस्त स्थिति काल प्रमाण उत्कर्षण किया जाता है, क्योंकि उसकी एक समय अधिक शक्ति स्थिति शेष है। इस प्रकार आगे के सब समय प्रबद्धों का एक एक समय अधिक से क्रम से उत्कर्षण किया जाता है। जिस समय प्रबद्ध की शक्ति स्थिति वर्तमान में बंधे हुए कर्म की स्थिति के समान है, उस समय प्रबद्ध का वर्तमान में बंधे हुए कर्म की अंतिम स्थिति तक उत्कर्षण किया जाता है। अभी इसका अर्थ है, अभी जो वर्तमान में वो पड़े हैं, जो अंदर पड़े हैं, उसका अंतिम निषेक है मान लेते हैं, या कुछ अंतिम से थोड़े पहला है, और उसमें शक्ति कितनी है, हाँ, तो वो वहाँ तक जाएंगे ऊपर। जिस समय प्रबद्ध की शक्ति स्थिति उतनी पड़ी है, वो वहां तक उत्कर्षण करके जाएंगे। देखो, जिस समय प्रबद्ध की कहा, जब कभी बंधा है परंतु उसकी शक्ति स्थिति अभी बाकी है, वर्तमान में बंधे हुए कर्म के स्थिति के समान है, शक्ति स्थिति और यहाँ बंधी हुई स्थिति, उस समय समय प्रबद्ध का वर्तमान में बंधे हुए कर्म की अंतिम स्थिति तक उत्कर्षण किया जाता है। मान लेते कोई कर्म, वो पहली वाली शेष स्थिति उसकी अंत कोड़ा कोड़ी है, और वर्तमान में भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर बंधा है, तो वो बढ़कर वहां तक बढ़ेगा। अभी ये समझना है के लिए, अभी 2000 सागर से तो ज्यादा नहीं होगा उसका, परंतु हाँ अभी अभी त्रस में आने पर उसने कुछ बांधा है, हाँ त्रस में आने पर अंत कोड़ा कोड़ी बांध दिए और फिर आगे चलकर और बांध रहा है, तो उसमें से भी वो कुछ है वो तो वहां तक वो बन ऐसा ही समझो। देखो जिस समय प्रबद्ध की शक्ति स्थिति यानी उसमें उन परमाणुओं की शक्ति वर्तमान में बंधे हुए कर्म की स्थिति के समान है। उत्कर्षण के लिए एक आवश्यक कंडीशन है कि वर्तमान में होने वाले बंध के साथ ही उन्हीं के साथ उसका उत्कर्षण होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कर्म परमाणु अंदर पड़े पड़े उसका उत्कर्षण हो जाए और ऊपर चले जाए। अपकर्षण में ऐसी कंडीशन नहीं है। मोक्ष मार्ग में तो अपकर्षण द्वारा ही सारी निर्जरा होती है, वहां तो विशुद्धि के कारण वो अपकर्षण होता रहता है और नीचे आता है। उत्कर्षण के लिए क्या आवश्यक है? बंध होना चाहिए। जिन जिन कर्मों का बंध नहीं होता है उन उन कर्मों में उत्कर्षण भी नहीं होता। नहीं तो सम्यक तो होने के बाद मिथ्यात्व का बंध नहीं हो रहा है और उसके परमाणु अंदर पड़े पड़े उत्कर्षण होकर वो सत्ता में और ऊपर ऊपर पड़े रहेंगे, ऐसी बात नहीं होती। उल्टा तो उसमें अपकर्षण होकर वो सम्यक प्रकृति रूप से होकर उदय में आते रहेंगे वेदक सम्यक्तों में। अन्य भी कर्मों में ऐसा समझना, उत्कर्षण तभी पॉसिबल है जब नया बंध हो रहा है और नए बंधने में जितनी ऊपर ऊपर की स्थिति है और वहां तक पुराने कर्मों में कर्म स्थिति शेष हो शक्ति वाली तो वो वहां तक ऊपर जा सकते, अधिक ऊपर नहीं। किस समय में बंधे थे? जिस समय में बंधे थे उसकी उतनी, हर एक समय वो 30 कोड़ा कोड़ी का नहीं बांधता है, जिसकी जितनी बंधी थी वहां तक ऊपर वो चलेगा। हाँ, अंतिम स्थिति तक उसकी अगर होगा तो वहां तक बढ़ेगा। अगर उतनी उसकी नहीं है शेष स्थिति, अभी एकेंद्रीय पर्याय में बंधे हुए 3 सप्तमांश के है, तो उसमें से जितने परमाणु वहां पर है वो वहां तक ऊपर चढ़ेंगे। तीन बार पढ़ा ना हमने। हाँ, अब शंका, यह समय प्रबद्ध कर्म स्थिति का कितना काल जाने पर बांधा गया है? ख्याल है ना, जिस समय प्रबद्ध की बात कर रहे हैं वो कर्म स्थिति के पहले समय से तो हमने शुरू किया था, तो इसका पूछना है वो समय प्रबद्ध कब बांधा था जिसकी आप बात कर रहे हो कि वर्तमान में बंधे हुए के अंतिम निषेक तक जो जा सकता है, उसका समाधान। कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर अंतर्मूर्तकम त्रस स्थिति से रहित वर्तमान समय प्रबद्ध की स्थिति मात्र चढ़कर बांधा गया है। देखो कर्म स्थिति जो है उसमें प्रथम समय से लेकर अंतर्मूर्त कम कर्म त्रस स्थिति 2000 सागर और प्लस एक अंतर्मूर्त कर्म स्थिति में कम किया, उससे रहित कौन सा है? वर्तमान समय प्रबद्ध की स्थिति मात्र चढ़कर बांधा गया है। इससे आगे के समय प्रबद्धों का उत्कर्षण इसके अनंतर अतीत समय प्रबद्ध के उत्कर्षण के समान है। अतीत समय प्रबद्ध पहले वाला समय प्रबद्ध, देखो इसको और समझाएंगे आगे, ये उत्कर्षण की बात सभी आगे समझाई है 52 पृष्ठ पर, तो हम बीच वाला पढ़कर ही आगे बढ़ेंगे। हा? पहले तो ये कंडीशंस बता रहे हैं ना, अभी तो त्रसों में आया है तो वहां उत्कर्षण भी वहां हो रहा है। अब ये त्रसों में जो आया है जीव उसकी बात कर रहे हैं, ये जो जो विषय है ना वो आगे चलकर उन्होंने विशेषार्थ उसके बताए हैं, और फिर अभी तो आज या कल में तो अपना फिर ब्रेक पड़ेगा, कर्मकांड में से वह विषय हम पढ़ेंगे उत्कर्षण वाला है, अपकर्षण वाला है, उसमें क्या क्या बातें बनती है, ये शक्ति स्थान वगैरह जो कर्म की बात, तो ये सभी बातें समझ में आवे ऐसी है। अभी लगता है ना क्या कन्फ्यूजन चल रहा है, कुछ नहीं तो उसके लिए थोड़ी यानी शांतिपूर्वक मैं भी उसको ढूंढ के रखूंगी। अभी तो गैप तो पड़ने वाला है 2 महीने का, अभी देखते हैं। वहाँ परिभ्रमण करने वाले उक्त जीव के, ये वही जीव लिया है जो पृथ्वी कायिक में इतना उसने काम ये काल बिताया है। सूत्र पढ़ना रह गया 15 नंबर का। तथ्य संसार मानस, संसरमान यानी वहीं पर जन्म मरण करने वाला, संसार उसी के लिए, संसरण यानी हाँ परिभ्रमण। बहुआ पज्जत भवा, थोड़ा अपज्जत भवा, जैसे बादर में केंद्रियों में हमने देखा था पृथ्वी का एक में भी, वैसे वो कंडीशन यहाँ भी लगाएंगे। वहाँ परिभ्रमण करने वाले उक्त जीव के पर्याप्त भव बहुत होते हैं और अपर्याप्त भव थोड़े होते हैं। इस सूत्र द्वारा भवावास की प्ररूपणा की गई है। हमने पहले देखे थे ना ये कौन भवावास है, वो आयु आवास है, ऐसे ऐसे जो बादर एकेंद्रियों में पृथ्वी कायिक में कंडीशंस उन्होंने बताई थी कि ये उस जीव ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है, वैसे त्रसों में भी उसको कहेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि पर्याप्त भव बहुत होते हैं और अपर्याप्त भव कम होते हैं। ये भवावास, ऐसे आवास उन्होंने 6 बताए, तो इसमें से ये भवावास। इसका अर्थ पूर्व सूत्र 7 के समान कहना चाहिए। पर्याप्तों के भव बहुत है, वो कितने किससे ज्यादा होते हैं, तो वो क्षपित कर्मांशिक की अपेक्षा से। सूत्र 8 चाहिए, ऊपर क्या लिखा है, क्या ऊपर कुछ नहीं लिखा, पूर्व के समान 7वें में आया था कि 8वें में, 8वें में भवावास की कंडीशन 8वें में डाली, वहां परिभ्रमण करने वाले जीव के, ये सूत्र 8 करना यहाँ पर। शंका, एकेंद्रियों में कहे गए 6 आवासों का, आवास शब्द है ना भव आवास, ये जो वहां की कंडीशंस बताई थी या जो कुछ आवश्यक बातें, तो वो एकेंद्रियों में बताए थे 6 आवास, भवावास, आयु आवास, प्रदेश विन्यावास, योगावास, संक्लेश आवास वगैरह वगैरह। तो कहते यहाँ फिर से कथन किस लिए किया जाता है, उसका समाधान, एकेंद्रियों में जो 6 आवास कहे गए हैं वे ही त्रसकायिकों में भी होते हैं, अन्य में नहीं, इस बात का ज्ञान कराने के लिए यहाँ फिर से उनका कथन किया गया है। कोई समझेगा कि एकेंद्रियों में होते हैं, अभी यहाँ फिर त्रसों में होते हैं कि नहीं होते, ऐसे आशंका हो सकती है, इसलिए यहाँ फिर से दोबारा बताया, यहाँ भी पर्याप्त भव ज़्यादा होते हैं और अपर्याप्त भव कम होते हैं। अब आगे वाली कंडीशन जो अद्धावास की है, काल की, दिहाओ पज्जत धाओ, रहस्याओ अपज्जत धाओ, पर्याप्त काल दीर्घ होता है और अपर्याप्त काल थोड़ा होता है, यानी वो पर्याप्ति जल्दी जल्दी समाप्त होती है उसकी, तो अपर्याप्त काल इनका छोटा होता है, किन से छोटा होता है, पर्याप्त काल से, पर्याप्त काल से कम होता है क्या, किससे 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 कम होता है, जनरल नहीं, क्षपित कर्मांशिक से, जनरल की नहीं बात, क्षपित कर्मांशिक से इनका कम होता है। हाँ, इस सूत्र द्वारा अद्धावास की प्ररूपणा की गई है, शेष कथन सुगम है। इसकी तो डिटेल चर्चा पहले एकेंद्रियों के बारे में की थी, यहाँ तो उसका नाम बता दिया, इसको अद्धावास कहते हैं। अद्धा यानी काल, पर्याप्त का काल और अपर्याप्त काल है, उसमें उसकी चर्चा की है। अब आगे की कंडीशन बताते हैं 17 नंबर के सूत्र में। जदा जदा आउगम बंदी, तदा तदा तप पाओग जहन्नयेन जोगेन बंदी। हमने देखा था आयु का बंध होता है तो जघन्य योग से बनती है, क्योंकि तब वो 8 कर्मों में विभाजित होते हैं, इसलिए जब जब आयु का बांधता है तब तब उसके योग्य जघन्य योग से बांधता है, यानी वहां पर जो पॉसिबल जघन्य योग, पूरे लाइफ टाइम में जघन्य योग ऐसा नहीं कहा, वो तो परिणाम उपपाद योग में होगा। इस सूत्र द्वारा आयु आवास को आवास की चाहिए प्ररूपणा की गई है, शेष कथन सुगम है। मैंने पहले उन्होंने आयु और अद्धा आवास एक जगह लिया था क्या, चार नंबर में आयु वालों में उसको अद्धावास कहा था। अच्छा ये चार नंबर में ना दीर्घ आयु वाले उत्पन्न होकर के लघु काल में पर्याप्ति उनको पूर्ण करते हैं, वो पूरा होने के बाद अद्धावास लिखना था, ये बीच में लिखा है ना उसके। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पेज नंबर 51 पर ये आयु आवास की बात बताई। अब वहां जो निषेक रचना हो रही है ये गुणित कर्मांशिक जीव है, तो इसकी जो निषेक रचना होती है तो ऊपर के निषेकों में अधिक परमाणु और नीचे में कम, बंधने वाले में भी और उत्कर्षण होकर ऊपर चले जाने वाले में भी, दोनों में ये कंडीशन होती है। तो उसका सूत्र हम पढ़ते हैं, उवरिल्लिनम ठिदिनम निषेयस्य उक्कस्य पदे हेठिल्लिनम ठिदिनम निषेयस्य जहन्य पदे। ये सप्तमी नहीं है, जहन्य पद या पदम, यानी वो प्रथमा विभक्ति ही चल रही है, यानी उपरिम स्थितियों के निषेक का उत्कृष्ट पद होता है, यानी उसमें परमाणुओं की संख्या उत्कृष्ट होती है, और नीचे की स्थितियों के निषेक का जघन्य पद होता है। ये उल्टी रचना होती है, हमने देखा था ना, नहीं तो हमेशा कैसे होती है, जनरली गोपुच्छकार, नीचे ज़्यादा ऊपर कम, और यहाँ ऊपर ज़्यादा नीचे कम। इस सूत्र द्वारा अपकर्षण उत्कर्षण आवास का कथन किया गया है, इसी का दूसरा नाम है प्रदेश विन्यास आवास, अथवा अपकर्षण उत्कर्षण और बंध के प्रदेश विन्यास आवास का कथन किया गया है, शेष कथन सुगम है। इसको विलोम कहा, विलोम रूप प्रदेश विन्यास, नीचे कम और ऊपर ज्यादा। ये हमने पहले एकेंद्रिय के बारे में पढ़ा था, उसी को यहाँ नाम देकर बता रहे हैं। अब 19वां सूत्र, बहुसो बहुसो उक्कसानी जोगट ठानानी गच्छदी, बहुत बहुत बार उत्कृष्ट योग स्थानों को प्राप्त होता है। यहाँ संचय अधिक कराना है इसलिए उत्कृष्ट योग स्थान लिया है। योग स्थान का अर्थ होता है वहाँ जीव का जो योग कितना है, वो अधिक है कम है कितना है, उसको उत्कृष्ट योग स्थान कहा। इसके द्वारा योगावास की प्ररूपणा की गई है, शेष कथन सुगम है, इसी को योगावास कहा। अब 20वां सूत्र, वहां जितनी जितनी कंडीशंस बताई छे वो यहां पर भी लागू होती है। बहुसो बहुसो बहुसंकिले से परिणामो भवती, बहुत बहुत बार संकलेश परिणाम वाला होता है, बहुत संकलेश परिणाम वाला चाहिए, हाँ बहुत चाहिए, बहुसो बहुसो बहुसंकिले से परिणाम। क्योंकि अभी ये ऊपर आए ना त्रसों में तो उसके संकलेश भी बहुत हो गए। हाँ, इसके द्वारा संकलेशावास की प्ररूपणा की गई, इसी को संकलेशावास कहते हैं, अधिक अधिक संकलेश वाला। शंका, संकलेशावास का प्रदेश विन्यास आवास में अंतर्भाव क्यों नहीं किया गया है? प्रश्न क्या है, संकलेश के कारण वो उल्टी प्रदेश रचना होती है ऐसा क्यों नहीं कहते? तो उसका उत्तर क्या है, ये पहले हमने पढ़ा था कि ये जो विलोम रूप या अनुलोम रूप जो है वो संकलेश के कारण नहीं होती है, गुणित कर्मांशिक के कारण होती है। गुणित कर्मांशिक जीव में ऐसी उल्टी रचना होती है, अकेला संकलेश परिणाम है इसलिए वैसा होता, ऐसा नहीं। देखो उसका समाधान, संकलेश प्रदेश विन्यास का कारण नहीं है। प्रदेश विन्यास यानी जो रचना होती है, स्थिति रचना, निषेक रचना जो होती है उसको प्रदेश विन्यास कहा। कहा कितने प्रदेश है ये संक्लेश उसका कारण नहीं है, किंतु गुणित कर्मांशिकत्व उसका कारण है। यहाँ जो विलोम रूप रचना होती है, ऊपर ज़्यादा नीचे कम, ये कौन से कारण होते हैं? उसका कारण क्या है? तो गुणित कर्मांशिकत्व, गुणित कर्मांशिक पना, यही उसका कारण है। इस कारण उसका प्रदेश विन्यास आवास में अंतर्भाव नहीं किया है, यानी संक्लेश आवास और प्रदेश विन्यास आवास एक कहो तो वो उसका कारण होता तो एक कहते, ये अलग अलग कारण है, इसलिए अलग अलग कथन किया। एवं संसरी दूण अपच्छिमे बहुक गहणे अधोसत्तमाये पुढ़वीये नेरयेसु उवबन्नु। इस प्रकार परिभ्रमण करके अंतिम भव ग्रहण में, लास्ट वाला, नीचे सातवीं पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न हुआ। किसके अंतिम भव ग्रहण? हाँ, त्रस पर्याय का अंतिम भव उसका, मोक्ष जाने वाला अंतिम नहीं, क्योंकि वो सातवें नरक से कोई जाएगा नहीं और वहां से आके भी कोई जाएगा नहीं। क्या जा सकता है? कहाँ से आकर जा सकता है मोक्ष? अधिक से अधिक कौन से पृथ्वी से आकर जीव मोक्ष जा सकता है? पहली से तो आ ही सकता है, तीसरी से आकर तो तीर्थंकर भी हो सकता है, और चौथी से आकर सामान्य केवली भी हो सकता है, पांचवी से आने वाला मुनि हो सकता है परंतु केवली नहीं हो सकता, छठी से आने वाला मुनि भी नहीं हो सकता है, हाँ, और सातवीं से निकलने वाला तो उस भव में जो है सम्यक तो भी नहीं प्राप्त कर सकता, भले सातवीं में 33 सागर वर्ष तक उसने सम्यक तो रखा है, फिर भी मिथ्यात्व में जाकर वो संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच में जन्मेगा, उस भव में उसको सम्यक तो होगा ही नहीं। ऐसे सहज ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते, क्योंकि ऐसे ऐसे उसके संक्लेश परिणाम होते, ऐसे अन्य जो कुछ उसमें बातें बनती है। शंका यानी वो जो त्रस स्थिति का अंतिम भव है वो नरक में लिया उसको, तो वहां से कहाँ जाएगा वो? हाँ, संति संगी पंचेंद्रिय में ही आएगा, तिर्यंच में, और फिर बाद में वो एकेंद्रिय में चला जाएगा। कहा तो है अंतिम भव, फिर भी वो समझना यथा योग्य, क्योंकि वहां से कोई एकेंद्रिय में नहीं जाएगा। हाँ, शंका, अंतिम भव में नारकियों में किस लिए उत्पन्न कराया है? उसका समाधान, उत्कृष्ट संक्लेश से उत्कृष्ट स्थिति को बांधने के लिए। वो ध दिख रहा है क्या? बांध हुआ है, हाँ, ध करना उसको, बांधने के लिए और उत्कृष्ट उत्कर्षण कराने के लिए वहां उत्पन्न कराया है। क्या कहते हैं? उत्कृष्ट संक्लेश के कारण वो उत्कृष्ट स्थिति को भी बांधेगा और उत्कृष्ट उत्कर्षण भी होगा, तभी यहाँ पर वे उत्कर्षण क्या होता है वो पूछा। फिर अब यहाँ शंका समाधान करेंगे। तो शंका है, उत्कर्षण किसे कहते हैं? उसकी डेफिनेशन, उसका उत्तर क्या है? देखो, कर्म प्रदेशों की स्थिति को बढ़ाना उत्कर्षण कहलाता है। स्थिति उसकी बढ़ जाना, अंदर पड़े पड़े अभी वर्तमान परिणामों के कारण तो कर्म बन रहे हैं, परंतु पुराने जो बंधे हुए कर्म हैं वो उसी समय में उत्कर्षण होकर उसी परिणामों के कारण, यानी हम जो परिणाम करते हैं तो मात्र अभी वर्तमान में कर्म बनते हैं यही इतनी मात्र ही बात नहीं है, उसी परिणामों के कारण पूर्व कर्मों में भी उत्कर्षण अपकर्षण जो कुछ है वो चलता रहता है, सत्ता में पड़े हुए कर्मों में भी उथल पुथल चलती रहती है। देखो, कर्म प्रदेशों की स्थिति को बढ़ाना, अभी इसमें क्या क्या नियम लागू होते हैं, किसका उत्कर्षण होता है, कितना होता है, उसकी बात अब बताएंगे। उदयावली के स्थिति के प्रदेशों का उत्कर्षण नहीं किया जाता, ये बिल्कुल रूल है। उदयावली किसे कहते हैं? तो वर्तमान समय से एक आवली काल तक के उदय में आने वाले जो एक 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 निषेक है ना, एक आवली में कितने निषेक होंगे? हाँ बोलो भाई, देवेंद्र भाई, उदयावली में निशेक कितने हो गए? भूल गए, कोई बात नहीं, असंख्यात है इतना तो याद है। अच्छा, किसको याद है? जघन्य युक्ता संख्या, आवली का माप है जघन्य युक्ता संख्या, कोई बात नहीं, असंख्यात है और युक्ता संख्या है इतना तो याद है ना, तो जघन्य युक्ता संख्या है। एक आवली में जघन्य युक्ता संख्यात इतने समय होते हैं और एक एक समय में एक एक निषेक। इस तरह से जो उदयावली में आए हैं अब वो लौट कर ऊपर नहीं जा सकते, ये तो नियम है, एकांत नियम है उसका। तो अभी क्रम से वो नीचे की ओर ही बढ़ेंगे, उसमें वो उदीर्णा भी हो सकती है मगर वो तो ऊपर उत्कर्षण नहीं होगा। तो ये रूल बताया क्योंकि ऐसा स्वभाव है, उसमें क्यों नहीं लगता। स्वभाव आपके प्रश्न के मोहताज नहीं है कि आपका प्रश्न का जवाब उसको देना पड़े उसे स्वभाव नहीं कहते। अब ये तो बात हुई ना, तो उदयावली के ऊपर जो है, उदयावली के बाहर भी कहते उसका उत्कर्षण होगा, तो कब होगा, कितना होगा, कि क्या क्या होगा उसमें, वो बातें और भी आगे कंडीशंस बताते हैं। तथा उदयावली के बाहर की सभी स्थितियों, यहाँ स्थितियां जिसको कहा तो उसको निषेक समझना। उदयावली के स्थितियों का उत्कर्षण नहीं होता है ना, उदयावली में जो निषेक पड़े, निषेक किसे कहना, एक एक समय में एक साथ जितने परमाणु खिरते हैं उसको निषेक कहा, उसी को यहाँ स्थिति शब्द से समझा रहे हैं। तो उदयावली के बाहर की जितने निषेक है, जितनी स्थितियां हैं, उनका भी उत्कर्षण नहीं किया जाता, यानी कुछ का किया जाता है कुछ का नहीं किया जाता, तो उसमें और क्या बात है। किंतु चरम स्थिति के आवली के असंख्यात भाग को अति स्थापना रूप से स्थापित करके, वो स्थापित हुआ, स्थापित करके आवली के असंख्यात बहुभाग का उत्कर्षण होता है क्योंकि ऊपर स्थितिबंध का अभाव है। देखो अब ये पूर्व में बंधी हुई स्थिति का जो उत्कर्षण हो रहा है उसकी बात चल रही है। सत्ता में ऐसे परमाणु पड़े हैं अब जो उदयावली वाले जो निषेक है उसका उत्कर्षण नहीं होता, वो तो नीचे की ओर जाके खिरेंगे ही। ऊपर जो पड़े हैं उसका, अभी जो नया यहाँ बंद हो रहा है ना, उसमें इसका उत्कर्षण होगा ऊपर ऊपर। यहाँ तो बहुत सारे उदयावली के ऊपर बहुत सारे निषेक हैं, तो सभी निषेकों में से ऊपर थोड़े थोड़े परमाणु जाएंगे। क्या सभी में से जाएंगे? तो कहते अंतिम जो है वहां वाले कुछ निषेकों को छोड़कर, अति स्थापना वाली कहते हैं उसको, उसमें से क्या कहा, इसमें चरम स्थिति के आवली के असंख्यात भाग को अति स्थापना रूप से स्थापित करके आवली के असंख्यात बहुभाग का उत्कर्षण होता है क्योंकि ऊपर स्थितिबंध का अभाव है। यह जघन्य उत्कर्षण है, कम से कम उत्कर्षण कितना होगा उसकी बात चल रही है। कम से कम उत्कर्षण कितना होगा, तो यहाँ ये छोड़कर आवली का असंख्यात अभाग, यहाँ हम दो निषेक छोड़कर यहाँ से यहाँ ऊपर जो कुछ उत्कर्षण हुआ उसको हम कहेंगे वो उसका उतना उत्कर्षण होगा, क्योंकि जितनी स्थिति बांधी उसके ऊपर के बनने के साथ तो इसका कुछ लेना देना नहीं। हाँ, अभी इसका नीचे का भी वहाँ तक हो सकता है, इस तरह से ये आवली तक आएगा। सामान्य से इतना कहेंगे कि एक आवली उसका अति स्थापना वाली होती है, उसको छोड़कर ऊपर के निषेकों में उसका उत्कर्षण होता है। नहीं, बहुभाग का उत्कर्षण होता है, ये हम तीसरी लाइन फिर पढ़ते हैं। किंतु चरम स्थिति के आवली के असंख्यात भाग को अति स्थापना रूप से स्थापित करके आवली के असंख्यात बहुभाग का उत्कर्षण होता है, क्योंकि ऊपर स्थितिबंध का अभाव है, यह जघन्य उत्कर्षण है। ये जघन्य उत्कर्षण नीचे आता है, ऊपर कैसे? वहां तीसरी पुस्तक निकालना, उत्कर्षण अपकर्षण उसमें आया होगा, उसमें बहुत अच्छा समझाया है। तीसरी पुस्तक वो लब्धि सार वाली है ना, इसमें मैं देखती हूँ कर्मकांड के प्रकरण में, ये जो शुरुआत प्रस्तावने में बहुत अच्छा उन्होंने बताया है, यह प्रस्तावना अलग से दिए क्या? कर्मकांड संबंधी, एक मिनट, नहीं तीसरा लब्धि सार ऐसा ही ब्राउन ही है। हाँ वो किसका है? वो अपना नहीं है, नीचे है, खड़ा करके रखा है, ऐसा ब्राउन ही है, तीसरा तृतीय खंड लिखा है उसको, और अंदर के भाग में, हाँ राइट साइड में, बाहर रखने पड़ेगी अभी उसकी। फिर ये हम समय ज्ञान चंद्रिका की पीठिका है ना, वो उसमें देखते हैं। समय बढ़ रहा है ना, जघन्य उत्कर्षण नीचे से लेना है, ऊपर कहाँ तक जा सकता है ऐसा, उल्ट यहाँ वो कंफ्यूजन है ज्यादा। ये इसीलिए, हाँ ये उत्कर्षण अपकर्षण बहुत अच्छा समझा इसमें। ये मुझे तो लगता है कर्मकांड पहले पढ़ के इसमें जाना चाहिए फिर दोबारा। के बहुत दिन हुए ना, इसका पेज नंबर याद नहीं है। अनुक्रमणिका होगी ना, जाने दो। बीच में बहुत गैप हो रहा है ना। हम ऐसा समझेंगे अभी, ये सत्ता में पड़े हुए कर्म है। अब यहाँ कोई नया बंध के साथ ही उसका अब उत्कर्षण उसके साथ ही होगा। उदयावली को छोड़ना है हमको, और यहाँ जो अभी नए बनने वाले हैं तो उसके साथ इसका उत्कर्षण होगा। तो इसका उत्कर्षण कहाँ होगा? उदयावली के ऊपर वाला जो है वो कहाँ तक ऊपर चढ़ सकता है? तो यहाँ तक जाएगा। फिर इस तरह से ऊपर कम से कम और अधिक से अधिक ऐसा लेना है, यानी इतने को छोड़कर ऊपर चला जाएगा ना, इतने बीच में छुटेगा उसके और ऊपर चला। हाँ, इसकी स्थिति वो तो कंडीशन याद में रखना, कर्म स्थिति उसकी शक्ति जितनी है। हाँ, ये तो इतने ही, ये तो अब यहाँ ऊपर से देखते हैं। अभी यहाँ के ऊपर की छोड़कर यहाँ जाएंगे, ये अति स्थापना वाली छोड़कर यहाँ जाएंगे, ऐसा कहना है ना आपको? हाँ, उसके ऊपर तो बंद ही नहीं है, तो जितना बंद है उतने तक ही जाएगा। तो इस तरह, हाँ, तो ये बढ़ता रहेगा। यहाँ की अति, यहाँ तो आवली का असंख्या तो भाग ही छोड़ा था, अब ये नीचे के और वहाँ तक चले जाएंगे, ऊपर के वहाँ तक चले जाएंगे, यहाँ के यहाँ तक चले जाएंगे, तो यहाँ एक आवली वाला हो जाएगा डिफरेंस बढ़ते बढ़ते। इसकी जो क्लैरिटी है ना, वो तो हम कर्मकांड में मैं ढूंढ के रखूंगी अभी कहाँ पर है। बिल्कुल एक एक उन्होंने उसको संदृष्टि बताई, ये 16 निषेक का, ये 17वां, ये 23वें जा रहा है, ऐसा ऐसा उसने बहुत डिटेल में बताया है। नीचे फिर भी वो आवली तक होता है, आवली तक बढ़ेगा। ये यहाँ आवली का असंख्या तो भाग छोड़ कर किया, हाँ, अति स्थापना वाली, और फिर वो ये ऊपर ऊपर बढ़ेंगे तो वो आवली तक हो जाता है। तो कोई भी जो है वो आवली वाला छोड़कर उसके ऊपर ऊपर उसका प्रक्षेपण होता है, यानी कोई भी ऐसे वर्तमान का वर्तमान में ऐसा नहीं होगा, ये आवली वाला काल छोड़कर उसके ऊपर में चले जाएंगे अपने अपने निषेक के ऊपर, उसको उत्कर्षण कहेंगे हम। ये कन्फ्यूजन बहुत है मुझे पता है कि समझाने में मेरा ये कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है। देखो मैं इसको फिर पढ़ती हूँ। उदयावली की स्थिति के प्रदेशों का उत्कर्षण नहीं किया जाता क्योंकि ऐसा स्वभाव है, तथा उदयावली के बाहर की सभी स्थितियों का यानी निषेकों का भी उत्कर्षण नहीं किया जाता है, किंतु चरम स्थिति के आवली के असंख्यात भाग को अतिस्थापना रूप से स्थापित करके आवली के असंख्यात बहुभाग का उत्कर्षण होता है, क्योंकि ऊपर स्थितिबंध का अभाव है। यह जघन्य उत्कर्षण है, यानी ऊपर की ओर जघन्य उत्कर्षण लिया। पुनः ऊपरीम स्थितियों में अतिस्थापना को आवली मात्र प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिए। आवली के असंख्यात भाग से लगाकर वो यहाँ वो ऊपर की ओर से बढ़ते बढ़ते आवली तक होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अतिस्थापना किसे कहते हैं? जिसमें वो परिवर्तन या उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होता है, उतने आवली मात्र निषेक को अतिस्थापना आवली कहते हैं। उसको छोड़कर बाकी परमाणुओं में ये कुछ नीचे ऊपर होना है वो होता है। अब ये पुराने हैं कर्म और ये अभी नए बंध है, भले वो नया बंध थोड़ा है ज्यादा है जो कुछ है, तो अपने समान ये कॉन्टेम्प्रेरी में नहीं जाते हैं, तो ऊपर के कुछ छोड़कर वो नीचे के ऊपर में जाते हैं। तो यहाँ हम ये दो छोड़कर यहाँ का जो है, यहाँ के भी ये दो छोड़कर उसके दो छोड़कर लांग कर ऊपर गया है ना, इसके साथ वाला जो है उसके ऊपर के दो लांग कर उसके ऊपर चला गया, ये पुराना पड़ा हुआ, अब ये वर्तमान में बंधा हुआ। तो वर्तमान में बंधा हुआ उसी समय के निषेक में वो ट्रांसफर होगा, तो उसको उत्कर्षण नहीं कहेंगे, तो कितने ऊपर तक चला जाएगा? तो ऊपर के लिए तो आवली के असंख्यात भाग, ये दो छुटे ना, इसके ऊपर चला गया ये, तो ये ऊपर के भी आवली के असंख्यात भाग छोड़े, हम ऊपर से गिनते हैं, ये ऊपर का तीसरा निषेक वो कहाँ तक जाएगा? लास्ट में जाएगा, तो बीच में दो छूटे उसके, अभी चौथा है वो भी ऊपर तक चला जाएगा, उसके लिए तीन छूटे, हम अतिस्थावनी आवली वाला चार समय समझते हैं, और उसके भी नीचे का जो है वो भी ऊपर तक चला गया, तो उसके लिए चार छूटे। अब इसके आगे ये जो ऊपर से पांचवा है सत्ता में पड़ा हुआ, वो ऊपर नहीं जाएगा, वो चार ही छोड़कर ये इसके दूसरे तक चला जाएगा, ये अति स्थापनावली कहलाएगी। हर एक निषेक अपने ऊपर आवली माले, यहाँ के उसके साथ वाले आवली वाले छोड़कर उसके ऊपर चले जाएंगे। मान लेते हैं कोई 100 नंबर का है, नीचे से 100 नंबर का हम समझते हैं, दोनों ओर के 100-100 नंबर के, तो 100 वाला 100 में नहीं जाएगा, तो 100 वाला 101 में भी नहीं जाएगा, 102 में भी नहीं जाएगा, बीच में चार छूटेंगे, तो 100 वाला चार छोड़कर 105 में चला जाएगा, तो ये उसकी अति स्थापना वाली होगी। परंतु ऊपर स्टार्ट किया था वो 2 से शुरू किया था उसने, वहां तो आवली के असंख्यात भाग छोड़कर बहुभाग का उत्कर्षण हुआ था, परंतु जहां जहां है वो आवली को छोड़कर ऊपर ऊपर चला जाता है। अब उदयावली की बात करते हैं, उदयावली में तो यहाँ तो क्या है, वो तो ज्यादा हो जाएगा, यहाँ तो उदय के समय वाली आवली छोड़ना है, और आवली में मान लेते अभी हम यहाँ भी चार निषेक है, तो पांचवा निषेक का उत्कर्षण होगा, तो पांचवा निषेक का उत्कर्षण होकर वो तो पहले निषेक में जा सकते हैं, उसके नीचे निषेक ही नहीं है, ये जघन्य यहाँ हमने देखी, अब यहाँ भी दूसरा भी वहां जाएगा, वहां से ऊपर तक चला जाएगा, इस तरह से वहां भी अति स्थापना वो कहलाएगी। यानी अपने साथ वाले निषेकों में नहीं जाते, बीच में हम समझते अभी हम चार निषेक हमने छोड़े, चार को छोड़कर ऊपर जाते हैं, तो उसको हम उसका अपना अपना अति स्थापना कहा, पर ऊपर के एक ही निषेक में जाते हैं ऐसा बात नहीं। अभी हमने जैसे कहा 100 वाला 105 में जाएगा, 106 में जाएगा, 7 में जाएगा, ऊपर सर्वत्र चला जाएगा, कुछ परमाणु वहां जाएंगे, कुछ ऊपर जाएंगे, कुछ ऊपर जाएंगे, परंतु बीच वाले चार में नहीं जाएंगे, उसको अति स्थापना कहा। उत्कृष्ट यहाँ होगा, उत्कृष्ट अति स्थापना नीचे के उदयावली के ऊपर का निषेक है, वो आबादा काल छोड़कर उसके ऊपर जा सकता है, उसके नीचे निषेक ही नहीं तो जाएगा कहाँ, उसके ऊपर का कहाँ जाएगा, वो भी पहले समय से जाएगा, इसलिए यहाँ घटती चली जाएगी, और फिर वो आवली वाला जब तक आए उस चार का डिफरेंस वहां भी रहेगा। ऊपर तक जा सकता है, पर उसके लिए पहले में पहले कौन सी कंडीशन है, ऊपर तक जाएगा मगर छोड़ेगा क्या, वो कितना छोड़ेगा, कि उदयावली के ऊपर का समय मान लेते हम यहाँ 5 नंबर का है, और आबादा काल यहाँ 20 समय का है, तो ये पांचवा निषेक किस में जाएगा, ऊपर पहले में पहले 21 में जाएगा, क्योंकि 20 तक तो निषेक ही नहीं उसके बंधने वाले, ऊपर कहाँ तक चला जाएगा, ऊपर अंत तक चला जाए, उसमें कोई रुकावट नहीं उसको, उत्कर्षण उत्कृष्ट है, हम उत्कृष्ट आबादा अतिस्थापना देख रहे, अतिस्थापना की बात है, फिर दोबारा मैंने आपको सुना नहीं। हाँ
एक ही समय में जो ऊपर
नीचे की ओर उसका उत्कर्षण ज्यादा ऊपर तक जाता है, परंतु वो नीचे से लेकर ऊपर तक जा सकता है कहीं भी, हाँ एक ही निषेक में जाता है ऐसा नियम नहीं है, सर्वत्र जाएगा, सभी परमाणु अपने अपने ऊपर सर्वत्र जाएंगे, अपने साथ वाले एक आवली को छोड़कर ऊपर सर्वत्र जाएंगे, परंतु ये जो उदयावली का ऊपर का वाला है उसके साथ में कोई निषेक ही नहीं है, उसको तो आवली से भी ज्यादा छोड़ना पड़ता है, जो कुछ है वहाँ मिनिमम कहाँ, जहाँ कुछ अंतर्मुहूर्त भी हो सकता है कहीं कहीं, हाँ, और ज्यादा भी हो सकेगा उसका। हो गया समय, ये पूरा प्रकरण फिर दोबारा ले लेंगे उत्कर्षण वाला। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तक नो सदा देत हो। अश्विन भाई।